मेरे अजीज साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 18 जनवरी 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने कुछ अलग सा ही विषय चुना है, जिसे आप अलग अलग जगह बिखरे हुए मोतियों से बनाई हुई एक माला की तरह समझ सकते हैं, या एक ऑब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट भी समझ सकते हैं, जिसका कोई नाम देना थोड़ा सा मुझे कठिनाई सी महसूस हो रही है, या यदि आप नाम भी देना चाहें तो आप कह सकते हैं उदारता, यानी कि खुली सोच, बड़ी सोच, लिबरल सोच, या कट्टरवाद का विरोध, या संकीर्ण सोच का विरोध। इस तरह का कोई भी नाम आप दे सकते हैं। खासकर फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा, आपको ध्यान होगा कि सोमवार को की थी, खासकर खेल जगत के बारे में बातें करते हुए, और कल फिर मैंने चंद्रशेखर जी के बारे में जो बात की थी, जो भी टाटा सन्स के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। सच पूछे तो उनके केंद्र में ठीक है कि चरित्र महत्वपूर्ण था, उनके केंद्र में अगर आप इन दोनों वीडियो को सुनेंगे, दोनों ऑडियो को सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि मैंने जो दोनों में जिस पर जोर दिया है वह कि मनुष्य का चरित्र उसकी ज्ञान और दूसरी चीजों की तुलना में कई गुना ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और चरित्र को फिर मैंने अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की थी कि चरित्र वस्तुतः होता क्या है, उसी को फिर खेल के माध्यम से मैंने अपनी बात कही थी और उसी बात को मैंने फिर चंद्रशेखर जी के माध्यम से कही। दोस्तों, आज फिर से एक चरित्र हमें मिला है और वो है जायरा वसीम। जायरा वसीम का नाम आपने सुना ही होगा और सुनना ही चाहिए, क्योंकि ये अभी बिल्कुल नया नाम है और इसमें खासकर यदि आपने दंगल फिल्म देखी हो तो दंगल फिल्म में जिन्होंने एक गीता के बचपन का रोल निभाया है वह जायरा वसीम ही है। वो मात्र 16 साल की लड़की हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि अभी जब उन्होंने 10th का एग्जाम दिया है तो उसमें भी उनका स्कोर 92% रहा है। नो डाउट कि उनकी जो एक्टिंग थी उसकी सभी ने बहुत भरपूर तारीफ की है। आप सोचिए कि वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, और किस तरीके से, सच पूछे तो किसी भी हरियाणवी लड़की से भी ज्यादा हरियाणवी लड़की का इतना खूबसूरत रोल किया है, बहुत ही गजब का। और सच पूछे तो उनकी भूमिका को देखते हुए खुद मुझे लगा था कि यार ये कौन है, और ऐसा लग रहा था कि डेफिनेटली ये तो हरियाणा की ही कोई लड़की होंगी। दोस्तों, उनको लेकर के अभी एक विवाद छिड़ गया है। आपको मालूम है कि जो वहां जो कट्टरपंथी हैं उसे उन्होंने धमकी दी है, खासकर इस्लाम के नाम पर, कि यह सही नहीं है और इनको मॉडल ना माना जाए और इस तरीके से करके, और वो बेचारी इतनी डर गई कि उन्होंने फिर माफीनामा के रूप में अपने नेट पर डाला और बाद में फिर पूरा देश जायरा वसीम के पक्ष में खड़ा हो गया। एक अच्छी बात है, कम से कम राष्ट्र का समर्थन तो उनको मिला। मित्रों, ये महज एक घटना है, मैं केवल एक घटना की बात कर रहा हूं। इसके माध्यम से मैं जो एक लिबरल थॉट्स होते हैं और उसका हमारे जीवन पर जो प्रभाव होता है और बट नेचुरली की समाज पर जो टोटल प्रभाव होता है, आज मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, होता क्या है कि सीधी सी बात है कि अगर कोई दरवाजा छोटा हो उसमें कितना बड़ा जानवर प्रवेश कर सकेगा, कितना बड़ा आदमी प्रवेश कर सकेगा, या कितनी बड़ी वस्तु प्रवेश कर सकेगी, मतलब आप इसको सोच करके देखिए। बात दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मुझे कई बात इसलिए दोहरानी पड़ रही है क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ श्रोता जो हैं वो चीजों को बड़े एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट ले लेते हैं, मतलब उसको जरा सा भी एक कहने के अंदाज के रूप में नहीं देख पाते, समझ पाते, तो उससे मामला सच पूछे तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैंने एक बात कही थी कि गांव के लोग ज्यादातर कहते हैं कि ये जोरू का गुलाम है, ये शब्द गांव के लोगों में ज्यादा सुनने को मिलता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में, निम्न मध्यम वर्गीय में। ऐसा नहीं है कि मैं इसका मतलब मेरा ये कह रहा हूं कि सिर्फ गांव के लोग ही कहते हैं और शहर के लोग तो नहीं कहते हैं और शहर के लोग बड़े लिबरल थॉट्स के हैं। अब मेरे कहने का अर्थ कुछ लोगों ने इस तरह का लगा लिया तो बड़ी मुश्किल होती है ऐसे में बात करने से। मुझे लगता है कि हमें एक सुनने के तरीके को भी बढ़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं विस्तार करना चाहिए कि भाई अब बात कही जा रही है और 10-12 मिनट में मुझे अपनी बात समझानी है तो मैं कितनी चीजें कहूं कि एक छोटा सा दरवाजा है उसमें से आदमी निकल सकता है, जानवर निकल सकता है, वस्तु भी निकल सकती है। क्योंकि मैं तो कह दूंगा कि जानवर निकल सकता है तो पता लगा मेरे पास मेल आ जाएगा तो क्या वस्तु नहीं निकल सकती, तो आपने जानवर क्यों कहा तो आदमी क्यों नहीं कहा। मित्रों सच पूछे तो कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी मेरा दिमाग जाता है ऐसा क्यों हो रहा है, किसी चीज को भी देखने का हमारा नजरिया इतना छोटा क्यों हो रहा है, कैसे हम उसके सिर्फ अर्थ को पकड़ रहे हैं और वो भी वास्तविक अर्थ को नहीं जो शब्द अर्थ दे रहा है, उसका भाव खत्म हो रहा है, कहना क्या चाह रहा है वो खत्म हो रहा है। इसीलिए शायद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जब कहा गया कि आप कुछ बोलिए तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं बोलूंगा तो समझना उस तरीके से होगा नहीं और जो सच बात है कि जो मेरा अनुभव रहा उसको बोल करके बताया नहीं जा सकता। अब मुझे ये बात कहने में सच पूछे तो इसकी भी थोड़ी सी आशंका हो रही कि मैंने अभी गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया तो कुछ इसको इस रूप में ना ले लें कि अपने आप को ये डॉक्टर अग्रवाल गौतम बुद्ध समझ रहे हैं। मित्रों सच पूछिए तो आपको नहीं लगता है कि इसी को हम कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति पर जो दबाव पड़ रहा है वो कह सकते हैं? और यदि ऐसा है, सोचने और बोलने को इस तरीके से समझा जाने लगेगा तो आपको नहीं लगता है कि इसका कितना जबरदस्त दुष्प्रभाव इनोवेशन पर पड़ेगा, इनोवेशन पर जहां से नया कुछ निकलता है। और जायरा वसीम पर अभी जो बातें कही जा रही हैं उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए, बजाय इसके कि उस लड़की में जो टैलेंट है, जो क्षमता है, जो हमारे लिए मॉडल बन सकती है, हम उसे मॉडल के रूप में लें, हम किस रूप में ले रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये जो प्रतिबंध लगाना है इसका मतलब है कि जो हमारे समाज की जो प्रतिभा है, जो सोच है, जो विचार है, चाहे वो कला जगत के हों, चाहे वो एकेडमिक फील्ड के हों, चाहे वो साइंस के फील्ड के हों, हम उनके प्रवेश करने के दरवाजे को छोटा कर रहे हैं। और जब बट नेचुरल है कि जब आप दरवाजे को छोटा कर देंगे मित्रों तो फिर बड़ी की संभावना तो खत्म ही हो जाएगी, नष्ट ही हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति जो उसमें घुसना चाह रहा है पहले तो वो अपने को बौना बनाएगा, क्योंकि अब वो दरवाजे को बड़ा बनाने के लिए नहीं सोच रहा है, अपने को छोटा बनाने के लिए सोच रहा है ताकि वो इस दरवाजे में घुस सके। अदरवाइज उसको लगेगा कि फिर मेरी वक्त ही क्या है, फिर मैं क्यों सोचूं, क्यों कुछ नया लिखूं, क्यों कुछ नया करूं, क्यों अपनी प्रतिभा को सामने लाऊं, क्योंकि चाहे वो कितनी भी बड़ी हो घुसना तो उसको छोटा बनकर पड़ेगा। दोस्तों इसी को कहा जाता है सच पूछे एक कला पर पड़ने वाला दबाव और टैलेंट पर भी पड़ने वाला दबाव। जब तक हमारे विचार उदार नहीं होंगे तब तक कभी भी बड़ापन आ ही नहीं सकता, चाहे हम पैसे के मामले में कितने बड़े हो जाएं, चाहे हम पद के मामले में कितने बड़े हो जाएं। और अगर हमारे विचार बड़े नहीं है तो मुझे तो नहीं लगता है दोस्तों कि कभी भी हमारी जिंदगी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो जिंदगी है वो तो विचारों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। मित्रों इसीलिए आपको ध्यान होगा सोमवार को भी मैंने कहा था कि जब मैंने कपिल शर्मा जी के मंच पर महावीर प्रसाद फोगट जी को बैठे हुए देखा तो वो मुझे एक बहुत ही विराट नजर आ रहे थे और सच में ऐसा मन कर रहा था कि मैं उनको प्रणाम करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने जो संघर्ष किया होगा पूरे के पूरे समाज से, पूरे के पूरे समुदाय से, जिसे हम बड़े लोकल भाषा में कहें तो पंगा लिया है, जो लड़ाई मोल ली है वो कम बड़ी बात नहीं है, और वो भी लड़की का पिता होकर, क्योंकि लड़कियों के साथ तो फिर से समाज ने दुनिया भर के दूसरे बंधन लगा रखे हैं। और मित्रों अब आपको थोड़ी सी शायद ये बात समझ में आए, जैसे कि अभी जायरा वसीम के बारे में जो कहा गया है कि एक हमारे यहां बहुत बड़ी विचारक रही हैं जिनको नोबल प्राइज भी मिला, उपेक्षिता उनका बहुत उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है, उसमें उन्होंने कहा था और मैं कई बार इसका उल्लेख भी कर चुका हूं कि लड़की पैदा नहीं होती है, लड़की बनाई जाती है। पैदा तो वो भी कुश्ती लड़ने के लिए हुई है, पैदा तो वो भी एक्टिंग करने के लिए हुई है, पैदा तो वो भी जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है वहां पर चौकसी करने के लिए हुई है। परसों अगर आपने दैनिक भास्कर में एक चित्र देखा हो, परसों नरसों की बात है, तो उसमें दिखाया है कि कैसे सुबह 5 बजे लड़कियां फौज की ड्रेस पहन करके सुबह 5 बजे सीटी बजते ही 3 मिनट के अंदर बॉर्डर पर तैयार होकर के चल जाती हैं, और उनकी लाइन पंक्तियां दिखा रखी थी कि कैसे लड़कियां उस बॉर्डर पर जा रही हैं लगभग 15-16 हजार किलो ए फिट ऊंचाई पर। सोच करके देखिए, ये लड़कियां ही हैं। तो ये कैसे हुआ है, इसी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने उनको मौका उपलब्ध कराया है, और मौका उपलब्ध कराने के लिए अपने दिमाग को खोला है, समाज ने अपने दिमाग को खोला है, अभिभावकों ने अपने दिमाग को खोला है। क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग को खोलते नहीं है, तब तक हम अपनी क्षमता का अनुमान लगा ही नहीं पाते। दूसरे की क्षमता का तो सोचिए, मैं तो अब अपने ही सुख और हित और स्वार्थ की बात कर रहा हूं। जब तक मैं कुछ करूंगा नहीं, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा नहीं, तब तक मैं कैसे इस बात पर विश्वास कर लूं कि मैं इसे कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। फिर तो यही है कि दिमाग में जो मेरे डाल दिया गया है, मैं ज्यों का त्यों सिर्फ उसका ही पालन कर रहा हूं, दैट्स ऑल। इसी को उन्होंने कहा था कि लड़कियां पैदा नहीं होती हैं, बनाई जाती हैं, मतलब उनकी मानसिकता इस तरह की बना दी जाती है। तो दोस्तों, ये बात जो लड़कियों के बारे में कही गई है, याद रखिए, हम सब के बारे में भी है। हम सब बनाए गए हैं, इस समाज के द्वारा बनाए गए, और समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमको बनाने में। ऐसा नहीं है कि उसने हमको कोई जाहिल बना दिया है, हमको कोई उसने बदमाश बना दिया है, हत्यारा बना दिया है। समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे बनने में है, लेकिन जो हमारी सोच है उसमें भी समाज का कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत से ऐसे समाज हैं जो अपने लोगों को बहुत उदार नागरिक बना रहे हैं, बड़ा बड़ा सोचने वाला बना रहे हैं। कुछ समाज ऐसे हैं या समुदाय ऐसे हैं जो जरा भी नया कोई सोचता है, करता है, तो वो तिलमिला उठता है, उसके रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर यह कि यदि आप बड़ी जिंदगी चाहते हैं, बड़ा जीवन चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बड़ी बात तो यह है कि आजादी से खुली हवा में जीना चाहते हैं, उसका एक ही उपाय है कि अपने घर के दरवाजे को और अपने घर की खिड़कियों को, यानी कि सोचने के जो दरवाजे हैं और जो खिड़कियां हैं, उनको बड़ा कीजिए। जब खिड़कियां और दरवाजे बड़े होंगे तो ज्यादा हवा और ज्यादा रोशनी आएगी, और उसी से जो हमारी जिंदगियां हैं वह खुशनुमा बन सकेंगी। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।